नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और युद्ध नायकों के परिवारों के कल्याण को बताया केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, युवाओं को कुशल व रोजगार परक बनाना समय की मांग। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की बात दोहराई, कहा धारा 118 में राहत देने पर विचार कर रही है सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, जीएसटी सुधारों से समाज के हर वर्ग को मिलेगी राहत, आर्थिक सुधारों को नया आयाम दे रही है केंद्र सरकार। और प्रदेश में मॉनसून के दौरान सामान्य से 46% अधिक वर्षा दर्ज, कल से मॉनसून के धीमा पड़ने के आसार। अब समाचार विस्तार से। वर्ष 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के सैनिकों के बलिदान और साहसपूर्ण कार्यों की याद में देश इस महीने हीरक जयंती मना रहा है। केंद्र सरकार कर्तव्य की राह पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले और शक्ति परीक्षण में भारत की विजय सुनिश्चित करने वाले वीरों के सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में 60 वर्ष पूर्व पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में पूर्व सैनिकों व युद्ध नायकों के परिवारों के साथ बातचीत की। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी युद्ध केवल युद्ध के मैदान में नहीं लड़ा जाता, बल्कि युद्ध में प्राप्त विजय पूरे राष्ट्र के सामूहिक संकल्प का परिणाम होती है।
युद्ध केवल बैटल फील्ड में ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि युद्ध में जो विजय मिलती है एक सामूहिक संकल्प का वो परिणाम होती है। 1965 के उस कठिन समय में जब चारों ओर अनिश्चितता और चुनौतियां थी, तब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व ने देश में उन चुनौतियों का सामना किया। शास्त्री जी ने उस दौर में न केवल निर्णायक राजनीतिक नेतृत्व दिया, बल्कि पूरे देश के मनोबल को ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हमारे हृदय में गूंजता है, जय जवान जय किसान।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिक्षा और कौशल को सामाजिक विकास के मुख्य स्तंभ बताया है। उन्होंने आज शिमला में एडू स्किल्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा से कौशल को बढ़ावा मिलता है और इन दोनों के संयोजन से ही राष्ट्र का विकास होता है। राज्यपाल ने कहा कि देश की 65% से अधिक आबादी युवा है और युवाओं को कुशल व रोजगार परक बनाना समय की मांग है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि हिमाचल को औद्योगिक हब बनाया जाएगा और राज्य सरकार धारा 118 में राहत देने पर विचार कर रही है। सीआईआई की हिमाचल इकाई ने आज शिमला में आर्थिक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल का औद्योगिक निर्यात 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भी उद्योगों का बड़ा योगदान है।
सेल में भी जो है 118 दोबारा लेनी पड़ती है। एक बार 118 ले ली है तो उसको रीसेल उसको जो है दोबारा लेने में बहुत दिक्कत होती है। इसको हम ईज आउट कर रहे हैं। यहाँ जैसे फायर के एनओसीज है, पॉल्यूशन कंट्रोल के एनओसीज है, एनवायरमेंट के एनओसीज है, उसके बारे में जो है विशेष रूप से चर्चा की और हम जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हिमाचल प्रदेश में जो है बना रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में जो है और इन्वेस्टमेंट आए। अगर मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बिजली के दाम जो है रिड्यूस कर दिए जाएंगे, 40 पैसे पर यूनिट जो है अक्टूबर से जो उनको डीबीटी के आधार पे जो रिफंड कर दिया जाएगा, हम इस ओर जो है वो सोच रहे हैं।
नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि बिलासपुर जिले में घुमारवीं बल्ही अमरपुर सड़क को सुदृढ़ करने पर 6,13,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने आज घुमारवीं क्षेत्र की सेऊ पंचायत में जनसमस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित कर रही है, जहां डॉक्टरों व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जा रही है। उन्होंने बताया कि घुमारवीं नागरिक अस्पताल में 6 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए गए हैं। राजेश धर्माणी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भराड़ी का दौरा भी किया और मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिले की पूह पंचायत में जनसमस्याएं सुनी और अधिकारियों को इनके जल्द निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निर्धन, भूमिहीन और उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और वन अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है। जगत सिंह नेगी ने लोगों से वन अधिकार अधिनियम का लाभ उठाने के लिए आगे आने को कहा। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि जीएसटी में किए गए सुधारों से आम आदमी से लेकर व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सुधारों को नया आयाम दे रहे हैं। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 28% जीएसटी के तहत आने वाले 90% उत्पादन को 18% की जीएसटी में लाया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि रोजमर्रा की चीजों और कृषि उत्पादों का विशेष ध्यान रखा गया है और अनेक उत्पादों पर जीएसटी को खत्म किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया भर में 11वें पायदान से 4थे पायदान पर पहुंच चुकी है और वर्ष 2029 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर पहुंचाने का लक्ष्य है।
जो आर्थिक सुधार की दृष्टि से ये जो फैसले लिए गए, इससे देश की आर्थिकी में बहुत बड़ी मजबूती आने की संभावना आने वाले समय में हो। सबसे बड़ा जो हर व्यक्ति के इकोनॉमी को जो है आर्थिकी को प्रभावित करता है, उसमें सीमेंट में आप देखिए कि 28% था पहले, उसको 18% और उसके बाद जो बड़े इम्पैक्ट इसमें जो आए हैं वो इम्पैक्ट खासतौर से जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारे किसानों और बागवानों के लिए इसमें बहुत बड़ी एक राहत है। उस दृष्टि से अगर हम ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो जहां पहले 12% लगता था, 5% लगेगा। दो पहिया वाहन की अगर हम बात करें जिसमें 28% था, अब उसमें से 10% कम करके 18% कर दिया गया है।
जनसेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाया है और उनके जीवन स्तर में सुधार किया है।
भारत में विविध जनजातियां रहती हैं। इनकी संख्या 10 करोड़ 45 लाख से ज्यादा है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समुदायों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण उनका सशक्तिकरण हुआ है। सरकार द्वारा शुरू की गई कई प्रमुख योजनाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्यों का बजट 2013-14 से अब 5 गुना तक बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए न्याय, सम्मान और उत्थान का एक शक्तिशाली मिशन बन गया है।
साथियों, आदिवासी कल्याण हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। जनजातीय समाज की पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पर हमारी सरकार का बहुत जोर है।
ये पहल 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 75 समुदायों के जीवन में बदलाव ला रही है। इससे 47 लाख से अधिक जनजाति लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 17 विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करके 63,000 से अधिक में आधारभूत सुविधाओं की कमी को पूरा करना है। इससे लगभग 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा।
प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में अभी तक सामान्य से 46% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो वर्ष 1995 के बाद मॉनसून की सबसे अधिक वर्षा है। वर्ष 1995 में 1,029 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, जबकि इस वर्ष मॉनसून के दौरान अभी तक 1,021 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि लाहौल स्पीति के अलावा अन्य सभी जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। उन्होंने कहा कि कल से वर्षा में कमी आएगी और 25 सितंबर तक मध्यवर्ती इलाकों में कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। सांसद कंगना रनौत ने राज्य सरकार से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को राहत पैकेज देने की मांग की है। उन्होंने आज कुल्लू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लिया। पत्रकारों से बातचीत में कंगना रनौत ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से कुल्लू मनाली में पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है और बड़ी संख्या में लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। सांसद ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार लोगों के साथ खड़ी है और प्रदेश को राहत पैकेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और युद्ध नायकों के परिवारों के कल्याण को बताया केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा युवाओं को कुशल व रोजगार परक बनाना समय की मांग। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की बात दोहराई, कहा धारा 118 में राहत देने पर विचार कर रही है सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा जीएसटी सुधारों से समाज के हर वर्ग को मिलेगी राहत, आर्थिक सुधारों को नया आयाम दे रही है केंद्र सरकार। और प्रदेश में मॉनसून के दौरान सामान्य से 46% अधिक वर्षा दर्ज, कल से मॉनसून के धीमा पड़ने के आसार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।